حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، تصنیف سید حمید اللہ نصرت پاشا صاحب۔ حضرت میر محمد اسماعیل ابن میر ناصر نواب ابن سید محمد ناصر امیر ابن میر ہاشم علی ابن میر احتشام علی ابن خواجہ محمد عاصم ابن خواجہ محمد قاسم، آباؤ اجداد۔ حضرت میر محمد اسماعیل 1881 تا 1947 کا تعلق دہلی میں آباد ایک معزز اور معروف سید خاندان سے تھا۔ نسبت کے اعتبار سے آپ حسینی سید تھے، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے دادا سید محمد ناصر امیر صاحب کی ددھیال اور ننھیال دونوں طرف سے، جو آپ سے پیشتر 6 نسلیں تھیں، ان پر مشتمل آپ کا شجرہ نسب پیش خدمت ہے۔ ددھیال کی طرف سے خواجہ محمد قاسم، خواجہ محمد عاصم، میر احتشام علی، میر ہاشم علی۔ ننھیال کی طرف سے حضرت خواجہ میر درد، زینۃ النساء بیگم، شاہ محمد نصیر رنج، بی نصیرہ بیگم، سید محمد ناصر امیر، حضرت میر ناصر نواب صاحب۔ آپ کی بہن بھائیوں میں حضرت سیدہ نصر جہاں بیگم صاحبہ اور حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس شجرہ نسب سے واضح ہے کہ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب تھے، آپ کے دادا سید محمد ناصر امیر تھے اور پردادا امیر ہاشم علی تھے۔ میر ہاشم علی کا تعلق دہلی کے ایک معزز سید گھرانے سے تھا، جس نے تاریخ کے مختلف ادوار میں کئی مشہور فوجی سالار پیدا کیے۔ میر ہاشم علی کے دادا خواجہ محمد عاصم کا ذکر ہندوستان کی تاریخ میں ایک معروف فوجی جرنیل کے طور پہ آتا ہے۔ خواجہ محمد عاصم کو نواب خانے دوراں کا خطاب ملا تھا۔ میر ہاشم علی کی شادی بی نصیرہ بیگم سے ہوئی، جو حضرت خواجہ میر درد کے نواسے شاہ محمد نصیر رنج کی بیٹی تھیں۔ میر ہاشم علی اور بی نصیرہ بیگم کی شادی کے نتیجہ میں دہلی میں آباد دو نہایت معروف اور معزز سید خاندانوں کا انضمام ہو گیا، یعنی خواجہ محمد عاصم اور خواجہ میر درد کے خاندانوں کا۔ گویا حضرت خواجہ میر درد رشتہ کے لحاظ سے حضرت میر محمد اسماعیل کے دادا کے نانا کے نانا تھے۔ حضرت خواجہ میر درد اپنے زمانہ کے مشہور ولی اور صوفی شاعر تھے۔ حضرت خواجہ میر درد کو تصوف اور اردو ادب دونوں کی دنیا میں ایک بڑا رتبہ حاصل ہے۔ حضرت خواجہ میر درد کے والد حضرت خواجہ محمد ناصر اندلیب بھی بہت بڑے صوفی، بلند پایا فارسی شاعر اور اپنے زمانہ کے معروف اولیاء میں سے تھے۔ حضرت خواجہ میر درد اپنے والد حضرت خواجہ محمد ناصر اندلیب کے فرزند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مرید اول بھی تھے۔ حضرت خواجہ میر درد کی یہ رائے تھی کہ آپ کے والد حضرت خواجہ محمد ناصر اندلیب اسلام کی 12ویں صدی کے مجدد تھے۔ حضرت خواجہ محمد ناصر اندلیب تصوف کے ایک سلسلہ طریقہ محمدیہ کے بانی تھے۔ آپ ایک صاحب کشف و الہام بزرگ تھے۔ آپ کا ایک حیرت انگیز کشف ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بحالت کشف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس کشف میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، میں حسن مجتبیٰ بن علی مرتضیٰ ہوں اور میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق تمہارے پاس آیا ہوں، تا تجھے ولایت اور معرفت سے مالا مال کر دوں۔ ایک خاص نعمت تھی جو خانوادہ نبوت نے تیرے واسطے محفوظ رکھی تھی، اس کی ابتدا تجھ پر ہوئی ہے اور انجام اس کا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوگا۔ بے شک یہ ایک عظیم الشان کشف تھا اور ایک بہت بڑی بشارت تھی۔ اسی مکاشفہ میں حضرت خواجہ اندلیب کے پوچھنے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طریقہ تصوف کا نام طریقہ محمدیہ رکھا۔ بعض واقعات میں ایسا عجیب توارد ہوتا ہے کہ اس توارد کے وقوع سے ہی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اتفاقات کی کڑیاں نہیں بلکہ تقدیر الہی ہے۔ حضرت خواجہ محمد ناصر اندلیب کے کشف کے مطابق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نمائندے کے طور پر ولایت اور معرفت کی ایک خاص نعمت دے کر حضرت خواجہ ناصر اندلیب کے پاس بھیجا، اور یہ بھی بتا دیا कि इस नेमत की इब्तदा तुझ पर और इंजाम इसका महदी मऊद अलैहिस्सलाम पर होगा। इस वाक़या के अंदाजन 200 बरस बाद 27 अक्टूबर 1900 की रात को हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम को बहालते कश्फ आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आवाज़ इल्हामन सुनाई दी और आप इरशाद फरमाते हैं, अला मशरबिल हसन, यानी मशरब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। इसीलिए हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को हसनीयुल मशरब करार दिया है, यानी हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशरब से फैज़ याफ्ता। इन दोनों वाक़यात से ये साबित होता है कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नासर अंदलीब और हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम दोनों को हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक ख़ास बातनी मुनासबत थी और रूहानी एतबार से इन दोनों में हसनी रंग था। हसनी रंग से मुराद अमन पसंदी का तरीक और सुलो जोई का जमाली रंग है। बिलाखर अल्लाह ताला की तकदीर ने इस बातनी मुनासबत को एक ज़ाहरी रिश्ता की सूरत में ढाल दिया। तरीक़ा मोहम्मदिया के बानी हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नासर अंदलीब की सातवीं नस्ल में से हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम साहिबा बिन्नत हज़रत मीर नासर नवाब साहब थी। 1884 में हज़रत सैयदा नुसरत जहाँ बेगम अल्लाह ताला की ख़ास तकदीर के तहत और इस कश्फ के मुताबिक हज़रत महदी मऊद के अक़द में आ गईं और यूँ ये इलाही बिशारत पाया तकमील को पहुँची। हज़रत ख्वाजा मीर दर्द ने अपने वालिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नासर अंदलीब के इस कश्फ की खूब तफसीर व तबीर फरमाई है। चनाचा मै खाना दर्द के सफ़ा 128 पर हज़रत मीर दर्द के ये तारीख़ी अल्फाज दर्ज हैं और ये नस्बत मोहम्मदिया अलखासा हज़रत इमाम मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ख़त्म होगी और तमाम जहान एक नूर से रोशन हो जाएगा और उस नय्यर आज़म के अनवार में सब फ़िरकों के सितारों की रोशनी गुम हो जाएगी। चनाचे ऐसा ही हुआ। हज़रत मीर दर्द के इस अरशाद के ऐन मुताबिक तरीक़ा मोहम्मदिया की रोशनी बिलाखर नय्यर आज़म हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के अनवार में ज़म हो गई। विलायत और मारफत की वो ख़ास नेमत जिसकी इब्तदा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नासर अंदलीब पर हुई थी और इसका इंजाम तीन तरह से हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम पर हुआ। एक तो इस तरह कि विलायत और मारफत की इस नेमत की मेराज हज़रत महदी अलैहिस्सलाम पर हुई। दोयम ये कि तसव्वुफ के इस सिलसिला ने कि जिसका नाम तरीक़ा मोहम्मदिया था अपनी उम्र पूरी की और साथ ही खुदा ताला के हुक्म के ऐन मुताबिक महदी मऊद के ज़रिए एक नए रूहानी सिलसिला का आगाज़ हुआ जिसका नाम सिलसिला अहमदिया रखा गया। तीसरे इस तरह कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नासर अंदलीब के ख़ानदान में हज़रत महदी अलैहिस्सलाम दामाद की हैसियत से शामिल हुए और शरीयत के रूह से दामाद भी गोया बेटा ही होता है। पस हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के ख़ानदान को ये शर्फ हासिल है कि इसकी दामादी में हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम आए। इसी दामादी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने इल्हामन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से फ़रमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला लकुमुस सिहरा वन नस्बा, यानी तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने तुम्हारे लिए ये दामादी और ये नस्ब मुकद्दर फरमाए। वालदैन, दिल्ली में रिवाज था कि सादात को इज़्ज़त से मीर और ख्वाजा के अलकाब से पुकारा जाता था। चनाचे इसी रिवाज के तहत हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल के आबाओ अजदार में से बास के नामों के साथ ख्वाजा और बास के साथ मीर लिखा गया है। आपके वालिद हज़रत मीर नासर नवाब साहब इबन सैयद मोहम्मद नासर मीर साहब थे और आपकी वालदा हज़रत सैयद बेगम साहिबा बिनत सैयद अब्दुल करीम साहब थीं। आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत मीर नासर नवाब साहब थे जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खुसरे मोहतरम थे। आपकी वालिदा हज़रत सैयदा सैयद बेगम हजूर अलैहिस्सलाम की खुश दामन थी। आपके दोनों वालदैन बहुत आबिद व जाहिद बुज़ुर्ग थे, दोनों ही दीन के लिए गैरत दिखाने वाले और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार थे। हज़रत मीर नासर नवाब साहब एक साफ सीधे सच्चे और खरे इंसान थे, बल्कि साफ गोई और खरापन आपकी फितरत का हिस्सा और वजह शोहरत थी। बैत के बाद हिजरत करके दिल्ली से कादियान आकर आबाद हो गए और दमे आखिर तक سلسلہ احمدیہ کی خدمت کے لیے خود کو وقف کیے رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ پر بہت اعتماد تھا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کی پیدائش 1846 اور وفات 1924 میں ہوئی۔ حضرت سیہ بیگم صاحبہ چونکہ حضرت اماں جان کی والدہ تھیں، اس لیے قادیان کے ماحول میں احباب جماعت میں نانی جان کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے شوہر حضرت میر ناصر نواب صاحب گواہی دیتے ہیں، میں تو اپنی بیوی کے نیک سلوک سے دنیا میں ہی جنت میں ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جس خاتون کے بارے میں اس کے شوہر کی یہ غیر معمولی گواہی ہو، وہ بلا شبہ ایک نیک اور بزرگ خاتون ہوں گی۔ حضرت سید بیگم صاحبہ کی پیدائش 1847 اور وفات 1932 میں ہوئی۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے والد اور والدہ دونوں کی قبریں پہلو بہ پہلو بہشتی مقبرہ قادیان میں ہیں۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب کو خدا تعالیٰ نے 13 بچے دیے، جن میں سے صرف 3 نے عمر پائی، اور آپ کی نسل انہی تینوں میں سے چلی۔ نمبر 1 حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، نمبر 2 حضرت میر محمد اسماعیل صاحب، نمبر 3 حضرت میر محمد اسحاق صاحب۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے بہن اور بھائی۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی ایک بہن اور ایک بھائی تھے۔ آپ کی بڑی بہن جنہیں آپ آپا کہتے تھے، حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ تھیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم تھیں اور جماعت میں حضرت اماں جان کے نام سے معروف ہیں۔ حضرت اماں جان حضرت میر محمد اسماعیل صاحب سے 16 برس بڑی تھیں۔ حضرت میر صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت میر محمد اسحاق صاحب تھے، جو آپ سے 9 برس چھوٹے تھے۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی بہن حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ 1865 میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ 17 نومبر 1884 کو الہی بشارات کے عین مطابق آپ کا نکاح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا۔ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً فرمایا تھا، اشکر نعمتی رأیت خدیجہ تھی، یعنی میری نعمت کا شکر ادا کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پا لیا۔ اس الہام میں حضرت اماں جان کو میری نعمت اور میری خدیجہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بلند مقام اور شان کو دنیا پر ظاہر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدیجہ کا لقب پانا کوئی معمولی بات نہیں، یہ لقب ایمان میں آپ کی اولیت، آپ کے تقویٰ اور آپ کی بلند شان پاک بازی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ نے 1952 میں وفات پائی اور بہشتی مقبرہ روہ میں مدفون ہیں۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت میر محمد اسحاق صاحب تھے۔ آپ 1890 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت مسیح موعود کے رفیق ہونے کے علاوہ ایک انتہائی بلند پایا عالم دین، مترجم قرآن، فقیہ، مربی، مدرس اور منتظم تھے۔ آپ کا درس قرآن و حدیث مقبول زمانہ تھا۔ مہمان نوازی اور یتیم پروری میں آپ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی شادی 1906 میں حضرت صالحہ بیگم صاحبہ سے ہوئی۔ حضرت صالحہ بیگم حضرت پیر منظور محمد صاحب مصنف قاعدہ یسرن القرآن کی صاحبزادی تھیں اور حضرت صوفی احمد جان صاحب کی پوتی تھیں۔ حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی وفات 1944 میں قادیان میں ہوئی اور آپ بہشتی مقبرہ قادیان میں اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہیں۔ متعدد روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں بہن بھائیوں کو آپس میں انتہائی گہری محبت اور گہرا تعلق تھا۔ اسسٹنٹ سرجن۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب 18 جولائی 1881 بروز پیر دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب دہلی سے ہجرت کر کے قادیان آ کر آباد ہو گئے۔ بچپن اور سکول کا زمانہ قادیان میں گزرا اور آپ کی پرورش حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نگرانی میں ہوئی۔ 1900 میں آپ نے ایف ایس سی کا امتحان دیا۔ امتحان کے 2 ماہ بعد نتیجہ نکلا تو آپ فرسٹ ڈویژن میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں جان دونوں کی یہ خواہش تھی اور مشورہ تھا کہ حضرت میر صاحب ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب یعنی حضرت میر محمد اسماعیل کے والد کے لیے اس تعلیم کا خرچ اٹھانا ناممکن تھا۔ اپنی لیاقت کی وجہ سے حضرت میر صاحب کو ایف ایس سی کے اچھے رزلٹ کے سبب وظیفہ مل گیا، لیکن وہ ناکافی تھا۔ اخراجات کی کمی اس طرح پوری ہوئی کہ ایک روز حضرت میر صاحب کو اپنی ہمشیرہ یعنی حضرت سیدہ نصر جہاں بیگم صاحبہ کی طرف سے ایک بند لفافہ بسیغہ راز ملا، جس میں لکھا تھا کہ باقی تعلیمی اخراجات آپ خود ادا فرمائیں گی۔ اس انتظام کے ساتھ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا داخلہ 1900 میں میڈیکل کالج میں ہوا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ 5 سال بعد یعنی 1905 میں آپ نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی ایس پاس کیا اور ڈاکٹر میر محمد اسماعیل کہلانے لگے۔ اس امتحان میں آپ نے پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی۔ اس زمانہ میں آج کا پاکستانی پنجاب اور ہندوستانی پنجاب مل کر پنجاب کہلاتا تھا۔ نیز اس دور میں ہندو طلباء بالعموم جدید تعلیم میں پیش پیش تھے اور زیادہ اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے تھے۔ اس اعتبار سے بھی ایک مومن طالب علم کی امتیازی کامیابی ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب میڈیکل کالج کے آخری سال میں تھے جب 4 اپریل 1905 کو کانگڑا میں شدید زلزلہ آیا، جس کے نتیجہ میں کثرت سے جانیں تلف ہوئیں۔ حضرت میر صاحب کی خیریت کی کوئی اطلاع 3 دن تک قادیان میں موصول نہ ہوئی، جس کی وجہ سے اندیشے پیدا ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اندیشوں کے پیش نظر خصوصی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام کیا اسسٹنٹ سرجن۔ چند ماہ بعد ہی حضرت میر صاحب نے ایم بی بی ایس کا امتحان نہ صرف پاس کیا بلکہ پنجاب بھر میں اول پوزیشن حاصل کی، اور بعد ازاں آپ کا تقرر بحیثیت اسسٹنٹ سرجن ہوا۔ آپ کی اس کامیابی کی خبر جماعت کے اخبار روزنامہ بدر قادیان 20 جولائی 1905 میں اس عنوان کے تحت شائع ہوئی۔ ڈاکٹر سید محمد اسماعیل صاحب کا اسسٹنٹ سرجنی کا امتحان اور صاحب بصیرت کے واسطے ایک نشان یہ نہیں تھا کہ حضرت میر صاحب نے ایم بی بی ایس میں اول پوزیشن حاصل کر کے اسسٹنٹ سرجن کا منصب پایا ہے۔ ایسے واقعات تو دنیا میں ہر سال ہوتے ہی ہیں۔ دنیا کے ہر میڈیکل کالج میں ہر سال کوئی نہ کوئی تو ایم بی بی ایس کے امتحان میں اول آتا ہے، لیکن ہر اول آنے والے اور ہر اسسٹنٹ سرجن بننے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو قبل از وقت الہاماً خوشخبری نہیں دی ہوتی۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہرگز معمول کے واقعات نہیں تھے۔ حضرت میر صاحب کی کامیابی ایک الہی نشان تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کامیابی کی خوشخبری قبل از وقت الہاماً دے دی گئی تھی۔ بس الہام اسسٹنٹ سرجن بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان الہامات میں سے تھا، جن کا پورا ہونا دنیا دیکھ چکی تھی۔ آپ کی اس کامیابی پر اخبار بدر قادیان نے 20 جولائی 1905 کے شمارہ میں جو خبر شائع کی، اس میں سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف احمدیہ برادران کے واسطے بلکہ عام مومنوں کے واسطے بھی ایک بڑی خوشی کا موجب ہے اور قابل فخر ہے، بالخصوص اس واسطے کہ میر صاحب موصوف زمانہ تعلیم کالج میں ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ کالج کے طلباء اور اساتذہ کو ایک سچے مومن کی زندگی کا نمونہ دکھاتے رہے ہیں۔ حضرت میر صاحب کا اسسٹنٹ سرجن بننا آپ کی بعد کی ترقیات کا پیش خیمہ بھی بنا۔ آپ کا پہلا تقرر دہلی میں ہوا، اس کے بعد لاہور، ڈیرہ غازی خان، پانی پت، کرنال، سونی پت، جہلم، اٹک، مظفر گڑھ، لائل پور، گرداس پور، گوجرا، روہتک اور گجراوالہ میں آپ کا تقرر ہوا۔ آپ 1905 سے 1929 تک اسسٹنٹ سرجن رہے، اور 1929 میں آپ کی ترقی ہوئی اور آپ سول سرجن مقرر ہوئے۔ پھر 1936 میں آپ سول سرجن کے منصب سے ریٹائر ہو گئے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب ایک بہت اعلیٰ درجہ کے فزیشن اور ماہر سرجن تھے۔ آپ کی تشخیص اتنی درست تھی کہ اس دور میں جبکہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی، انگریز ڈاکٹر بھی آپ کی اس تشخیص کو تسلیم کر کے اس کے مطابق علاج کر دیا کرتے تھے۔ سید میر محمود احمد ناصر صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ روا نے بیان فرمایا کہ جب ان کے والد گرامی حضرت میر محمد اسحاق صاحب یعنی حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کے چھوٹے بھائی بیمار ہوئے، تو حضرت میر صاحب نے ایک مختصر معائنہ کر کے بغیر کسی ٹیسٹ وغیرہ کے ان کے مرض کی تشخیص کر لی، جو کہ ایک نایاب مرض تھا۔ بعد ازاں حضرت میر اسحاق صاحب کے مفصل ٹیسٹ لاہور سے کرائے گئے اور کئی ماہرین نے آپ کا معائنہ کیا۔ بالآخر وہ ماہرین اسی نتیجہ اور تشخیص پر پہنچے جس کی نشاندہی حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب پہلے سے ہی کر چکے تھے۔ حضرت قاضی محمد نذیر صاحب لائل پوری، پروفیسر جامعہ احمدیہ قادیان حضرت میر صاحب کے بارے میں ان دنوں کے حوالے سے، جبکہ آپ لائل پور فیصل آباد میں متعین تھے، فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ غربا کو اچھا علاج میسر نہیں ہے، اگر کسی غریب احمدی یا غیر احمدی مریض کو علاج کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا تکلف بتا دیا کریں، میں بلا فیس اس کے گھر جا کر اس کا علاج کیا کروں گا۔ حضرت میر صاحب کے بارے میں قاضی صاحب مزید گواہی دیتے ہیں کہ حضرت میر صاحب کے دل میں خدمت خلق کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ اتوار کے دن بھی چھٹی نہ کرتے تھے۔ نیز تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی دیانتداری اور تقویٰ کا یہ اثر تھا کہ ہسپتال کا عملہ جو آپ کے متحد تھا، آپ کے زمانہ میں کسی مریض سے رشوت لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ایک اعلیٰ منتظم بھی تھے، چنانچہ جس ہسپتال میں بھی آپ کا تقرر ہوا آپ نے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کے سب انتظامی اور مالی معاملات درست کر دیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو اپنی کسی ذاتی ضرورت کے پیش نظر بیماری کا جھوٹا سرٹیفکیٹ درکار تھا، جب حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے صاف انکار کیا تو اس شخص نے رقم کی پیشکش کی، لیکن آپ سختی سے اپنے انکار پر قائم رہے اور یہی فرماتے رہے کہ میں غلط سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ امت اللہ بیگم صاحبہ بیگم پیر صلاح الدین صاحب نے آپ کے زمانہ ملازمت کے حوالہ سے بعض دلچسپ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کو شکار کا بہت شوق تھا اور بہت بڑے ماہر تیراک بھی تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت میر صاحب اپنی تینوں بڑی بیٹیوں کو ساتھ لے کر پرندوں کے شکار پر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی یاداشتیں بیان کرتے ہوئے ایک بہت دلچسپ واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ جن دنوں میں حضرت میر صاحب کا تقرر روہتک تھا، ایک مرتبہ حضرت اماں جان آپ کی طرف قیام کے لیے تشریف لائی ہوئی تھیں، انہی دنوں میں ایک شدید سیلابی ریلا اچانک آ گیا۔ حضرت میر صاحب نے حضرت اماں جان اور اپنے اہل و عیال کو ایک محفوظ مقام پر پہنچایا، پھر لوگوں کے ریسکیو کی کارروائی میں مصروف ہو گئے، جہاں ایک طرف حکومت کے انتظام کے تحت بچاؤ کے لیے کشتیاں چل رہی تھیں اور وہاں دوسری طرف حضرت میر صاحب خود تیر کر لوگوں کی جانیں بچا رہے تھے۔ یہ کام انہوں نے اس قدر تندہی سے کیا کہ اس کا ذکر اس زمانے کے اخبارات میں بھی آیا۔ حکومت نے بھی حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی اس بے لوس انسانی خدمت کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے بعد بہت دلچسپ، سبق آموز اور ایمان افروز واقعات اپنی ایک کتاب میں یکجا کیے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے آپ بیتی۔ ہر احمدی ڈاکٹر کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، بیان کردہ واقعات بہت دلچسپ ہیں۔ حضرت میر صاحب کی اس تحریر سے آپ کا مقام یقین، آپ کی فہم و فراست، آپ کی پیشہ وارانہ مہارت اور آپ کی حصے ظرافت سب عیاں ہو جاتے ہیں۔ 1936 میں سول سرجن کے عہدے سے ریٹائر ہو کر قادیان آ کر آباد ہو گئے اور پھر باقی عمر قادیان میں ہی بسر کی۔ قادیان آنے کے بعد حضرت میر صاحب نور ہسپتال قادیان میں بھی طبی خدمات انجام دیتے رہے۔ قادیان میں اپنی رہائش گاہ الصفہ میں بھی لوگوں کا معائنہ و معالجہ فرماتے رہے۔ حضرت میر صاحب کو مریض سے فیس لینے میں تباً سخت ہچکچاہٹ ہوتی تھی، مریض خود ہی حضرت میر صاحب کی جیب میں فیس رکھ دیا کرتے تھے اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا کہ فیس میں دیے گئے سکے کھوٹے نکلتے۔ حضرت میر صاحب نے اپنے ڈاکٹری کے علم کو ہمیشہ خدمت خلق کے جذبہ سے استعمال کیا اور اس جذبہ کے پیچھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث واضح طور پر کار فرما دکھائی دیتی ہے، جو آپ نے فرمایا، الخلق و عیال اللہ ہے، یعنی کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ چنانچہ اسی بات کا اظہار آپ اپنے ایک شعر میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، جب سے یہ سمجھے کہ مخلوق ہے کل تیری عیال، خدمت خلق میں سب وقت لگا دیتے ہی تھے۔ یہ شعر محض ایک دعویٰ نہیں، بلکہ اس شعر کی صداقت کی گواہی حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرجہ ذیل الفاظ میں دی ہے۔ یہ تاریخی الفاظ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کے کتبہ کی عبارت میں درج ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، باوجود نہایت کامیاب ڈاکٹر ہونے کے اور بہت بڑی کمائی کے قابل ہونے کے، ज़्यादातर प्रैक्टिस से बचते थे और वो रबा की खिदमत की तरफ अपनी तवज्जो रखते थे। इसी वजह से मुलाजमत के बाद कई अच्छे मौके आपने खोए, क्योंकि इनमें आमदन ज़्यादा थी और रुतबा भी बड़ा था, मगर खिदमत खल का मौका कम था। बस बहसीयत डॉक्टर होने के हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब अपने मुर्शिद व मुता हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के इस फ़ारसी शेर के मुश्ताक थे। मरा मकसूदो मतलूबो तमन्ना खिदमत खलकस्त, हमी कारम हमी बारम हमी रस्मम हमी राहम। यानी मेरा मकसूद और मतलूब और तमन्ना खिदमत खल्क है, यही मेरा काम है, यही मेरी ज़िम्मेदारी है, यही मेरी रस्म है और यही मेरी राह है। हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब बतौर आरिफ बिल्ला। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब एक अजीम सूफ़ी और आरिफ बिल्ला थे। आरिफ बिल्ला एक ऐसे शख्स को कहते हैं जो अल्लाह ताला की मार्फत रखता हो। आरिफ बिल्ला वो होता है जो सिर्फ खुदा को मानता ही नहीं बल्कि खुदा को जानता भी है, और खुदा ताला के साथ इसका एक ज़ाती ताल्लुक होता है। खुदा की ज़ात और सिफात पर एक आरिफ बिल्ला का यकीन महज तकलीद और इल्म की बिना पर नहीं होता, बल्कि ज़ाती तजारब की बिना पर होता है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का ताल्लुक बिल्ला आपकी ज़िंदगी के वाक़ियात, आपकी नसर और आपकी अशार सभी से खूब ज़ाहिर होता है। आप अहले कश्फ में से थे और साहिब इल्हाम भी थे। अल्लाह ताला से हम कलामी का शर्फ आपको हासिल था। अल्लाह ताला के साथ आपको ताल्लुक, आप बिलमूम दुनिया से इसको छुपाया करते थे और अपने रूहानी तजारब के मामला में एक खास काम लेते। अपनी तहरीरात में जहाँ भी आपने अपने रूहानी तजारब बयान किए हैं, वहाँ ऐसे बयान का मकसद सिर्फ ये था कि वो इस्लाह और तरबियत के काम आए। आपकी तहरीरात से ये बात वाज़े तौर पर जाहिर है कि आपका मिशन लोगों को उस सच्चे तसव्वुफ की तरफ मायल करना है जो हज़रत महदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया दुनिया में राइज हुआ। हज़रत मीर साहब ने बहुत गहरे मुआरिफ बहुत सहल अल्फाज में बयान किए हैं। तसव्वुफ के लतीफ़ मजामीन को आप सादा काबिल फ़हम मिसालों के ज़रिए इस तरह बयान करते हैं कि पढ़ने वाला आसानी से समझ सके। आपकी तहरीर में एक ख़ास रंग नफ़ी ज़ात और ख़ुद मलामती का भी पाया जाता है। आपका इज्ज़ो नियाज बसाओकात आपकी तहरीर पढ़ने वाले को शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता है। जहाँ भी आप अपनी तहरीरात में अपने किसी रूहानी तजर्बा का ज़िक्र करते हैं, वहाँ ये वाज़े तौर पर दिखाई देता है कि ये ज़िक्र महज इसलिए है कि पढ़ने वाले के दिल में अपने रब को पाने के लिए नई उम्मीद और मोहब्बत पैदा हो और मायूसी और लातअल्लुकी दूर हो जाए। मिसाल के तौर पर आपका एक लतीफ़ रूहानी तजर्बा पेश है। एक मरतबा बहालते कश हज़रत मीर साहब ने देखा कि गुफरान नाम के एक फ़रिश्ता ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपको मैदान हश्र की सैर कराई है और आपको अल्लाह ताला की बख्शिश के मुतअद्दद हसीन मनाजर दिखाए हैं। इस लतीफ़ मुकाशफा का ज़िक्र आपने अपने एक मज़मून मग़फ़रत इलाही के नज़ारे में तफसील से किया है। आपको इस रूहानी सैर के दौरान अल्लाह ताला की इंतहाई बख्शिश के कई उम्मीद अफजा नज़ारे दिखाए गए। इस कशफी नज़ारे के दौरान आपने जहन्नुम के हकदारों को जन्नत मिलते देखी और अजाब के हकदारों को सवाब पाते देखा। ये कशफी हालत हज़रत मीर साहब पर ऐसे तौर पर तारी हुई जबकि आप अपने घर में अपने कमरे में मसरूफ़ तहरीर थे। ताज्जुब अंगेज़ बात यह हुई कि दौरान कश हज़रत मीर साहब उस नीम बेदारी की हालत में वो तमाम बातें जिनका आप कशफन मुशाहिदा कर रहे थे, उन्हें बिला इरादा साथ साथ असल में भी तहरीर फरमा रहे थे। चनाचे जब वो कशफी सैर ख़त्म हुई तो इसकी तमाम तफसीलात तहरीर की सूरत में अज खुद महफूज और कलमबद हो चुकी थी। सिर्फ आखिरी जुमला इस तहरीर का हज़रत मीर साहब ने पूरी बेदारी में और अपने इरादा से लिखा और वो ये था, वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मज़मून ऐसा है कि इसे पढ़कर गुनाहगार से गुनाहगार इंसान के दिल में भी बख्शिश की एक नई उमंग पैदा हो जाती है और पढ़ने वाला पहले से बढ़कर और पुर उम्मीद होकर दुआ और इस्तगफार की तरफ मायल हो जाता है। अल्लाह ताला का अपने ख़ास और मुकर्रब बंदों से ये सलूक होता है कि न सिर्फ ये कि वो खसूसियत से इनकी दुआएँ कबूल फरमाता है, बल्कि इन्हें कबल अज़ वक्त इनकी कबूलियत से आगाह भी फरमा देता है। ये उसकी ख़ास रहमत होती है। अल्लाह ताला अपनी इस ख़ास रहमत को बाज़ ख़ास इलामात के ज़रिए से ज़ाहिर फरमाता है, यानी जब भी दुआ के बाद इसके मुकर्रब बंदे ये इलामात ख्वाब या कश में देखें तो वो जान लेते हैं कि इनकी दुआ कबूल की गई है। गोया ये इलामत अल्लाह की रहमत की इलामात बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक मारूफ हकीकत यह है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मशहूर रफ़ीक हज़रत ग़ुलाम रसूल राजकी साहब को कबूलियत दुआ के निशान के तौर पर कशफन रोशनी दिखाई जाती थी। हज़रत मुसलह मऊद खलीफ़तुल मसीह उस्सानी की दुआओं की कबूलियत की इतला भी अल्लाह ताला इन्हें एक ख़ास अलामत रहमत के ज़रिया देता था, और वो अलामत रहमत हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल थे। अल्लाह ताला की रहमत और कबूलियत की अलामत भी वही बंदा बनाया जाता है जो ख़ुद भी इसकी रहमत और कबूलियत से कसीर हिस्सा पा चुका हो और अलामत बनाए जाने के लायक हो। हज़रत खलीफ़तुल मसीह उस्सानी अपने रोया व कशूफ के हवाला से अपनी मशहूर तकरीर मलाइकातुल्लाह में बयान फरमाते हैं, परसों की बात है मैंने देखा कि मैं बैठा हुआ हूँ और डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब जो मेरे मामू हैं वो आए हैं। मैंने एक लंबे तजुर्बा के बाद ये बात मालूम की है कि असमा के साथ रोया व कशूफ का ख़ास ताल्लुक़ होता है, और मुझे जो खुदा ताला से कबूलियत का ताल्लुक़ है इसके मतलब मैंने देखा है कि 98% मैं इन्हीं को देखता हूँ। इनका नाम है इस्माइल, जिसके मानी है खुदा ने सुन ली। जब मैं कोई दुआ करता हूँ तो मुझे यही दिखाए जाते हैं। हज़रत मुसलह मऊद के इस इक्तबास से ज़ाहिर होता है कि हजूर के ज़ाती तजर्बा में हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का नाम और चेहरा बतौर अलामत रहमत और अलामत कबूलियत दिखाया जाता है। यकीनन उस दौर में इस्माइल नाम के और भी अशख़ास मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मीर साहब को अपनी रहमत की अलामत और अपनी कबूलियत के आइकन के तौर पर मुंतखब फरमाया। इस बात का ताल्लुक अगरचे हज़रत मीर साहब के सीरत से नहीं है, लेकिन इस हकीकत से ज़रूर है कि खुदा ताला अपनी ख़ास रहमत के इजहार के लिए इन्हीं नफूस और अशिया को अलामत बनाता है जो अलामत रहमत बनाए जाने के लायक हों। एक अहमदी बुज़ुर्ग हकीम मीर अब्दुलरहीम साहब ने हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का एक हैरत अंगेज़ वाक़या सुनाया जो गैर मतबूआ है। ये वाक़या जहाँ एक तरफ हज़रत मीर साहब के यकीन और तवक्कुल को ज़ाहिर करता है, वहाँ दूसरी जानिब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत के लिए आपकी इंतहाई गैरत का भी सबूत है। वो बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब एक और रफ़ीक के हमरा रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। आपके कंपार्टमेंट में एक पीर फ़कीर भी सवार हो गए। पीर साहब को जब पता चला कि हज़रत मीर साहब का ताल्लुक आदियान से है और ये कि आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफ़का में से हैं, तो उन्होंने अज़राहे तंज कहा कि अगर मिर्ज़ा साहब नबी थे तो फिर आप लोग वली होंगे। जो दूसरे बुज़ुर्ग हज़रत मीर साहब के साथ थे वो तो खामोश रहे, लेकिन हज़रत मीर साहब ने बड़े एतमाद और इत्मीनान से जवाब दिया, हाँ हम वली हैं। इस पर पीर ने कहा कि अगर वली हैं तो फिर कोई निशान दिखाएं। हज़रत मीर साहब ने पूछा कि कैसा निशान चाहते हो। इस वक्त गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। पीर साहब ने मुतालबा किया कि गाड़ी अभी चलते चलते रुक जाए। चनाचे हुआ ये कि उनके ये कहते ही रेलगाड़ी को अचानक खुद ब खुद ब्रेक लगी और वो रुक गई। उस वक्त एक हलचल सी मच गई और गाड़ी का अमला उतरा और छानबीन करने लगा, लेकिन गाड़ी के इस तरह अचानक रुक जाने का कोई ज़ाहरी सबब सामने ना आया। हज़रत मीर साहब ने बार बार पीर साहब से पूछा कि आया इन्हें तसल्ली हो गई है या नहीं। जूँ ही पीर साहब ने घबरा कर इकरार किया कि वो मान गए हैं, तो वो गाड़ी दोबारा चल पड़ी। हज़रत मीर साहब अपने एक शेर में क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, कह दो इन अहले काल से दफ्तर लपेट लें, दिन मुद्दतों में आए हैं फिर अहले हाल के। इस शेर में अहले काल से मुराद वो लोग हैं जो ताल्लुक़ बिल्ला के बारे में सिर्फ ज़ुबानी बातें करते हैं, और अहले हाल से मुराद वो लोग हैं जिन्हें वाकई अल्लाह ताला के साथ एक ज़िंदा और हकीकी ताल्लुक़ हासिल है। इस ज़माना में जबकि यह शेर कहा गया था, अहले काल की मिसाल इस तरह के पीर फ़कीर और नाम निहार सूफ़ी थे जिनकी रूहानियत मसनूई और बेहकीकत थी। दूसरी तरफ अहले हाल की बेहतरीन मिसाल हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफ़का थे जो हकीकत में औलियाउल्लाह में से थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदी अन्नहुम सुबुलना, यानी वो लोग के जो हमें पाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, हम ज़रूर उन्हें अपने लिका की राहें दिखाते हैं। अरबी में सबील रस्ते को कहते हैं, जिसकी जमा सुबुल है। सुबुलना यानी हमारी राहें से मुराद इबादत के वो तमाम तरीक और दीन के वो तमाम शोबे हैं जो बंदे को खुदा से मिलाने का ज़रिया बनते हैं। लोगों के मुख्तलिफ दीनी रुझानात होते हैं और अपने अपने रुझान के मुताबिक मुख्तलिफ तबीयतें मुख्तलिफ शोबों की तरह मायल हो जाती हैं। दीन के मुख्तलिफ शोबों में से एक शोबा तसव्वुफ भी है, और तसव्वुफ की राह पर चलने वाले को सूफ़ी कहते हैं। एक सच्चा सूफ़ी साहिबे इल्म भी होता है और साहिबे अमल भी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके इल्म और अमल दोनों पर मोहब्बत इलाही का रंग गालिब रहता है। हर हाल में मोहब्बत इलाही इसकी तवज्जो का मरकज़ रहती है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का एक दिलनशीन शेर इसी कैफियत की खूब अक्कासी करता है। हज़ार इल्म व अमल से है बिल यकीन बेहतर, वो एक अशके मोहब्बत जो आँख से टपका। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफका भी अपनी अपनी तबाय के मुताबिक दीन के मुख्तलिफ शोबों में कमा रखते थे। ये तमाम कमालात इन्हें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत और रूहानी असर के नतीजे में हासिल हुए थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रूहानी मसा ने इन रुफका की सलाहियतों को खूब चमका दिया था। बाद रुफका का रुझान तबन तसव्वुफ की तरफ मायल था, यानी इनमें सूफियाना मिजाज ज़्यादा नुमाया था। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का ताल्लुक भी रुफका के इसी गिरोह से था। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तरबियत और रूहानी तवज्जो के असर से इन रुफका ने तसव्वुफ के मैदान में हैरत अंगेज़ तरक्यात हासिल की। हज़रत मीर साहब का तसव्वुफ आपकी ज़िंदगी के वाक़ियात के अलावा आपके मज़ामीन और आपके अशार से भी साफ ज़ाहिर है। इश्क़े इलाही में डूबी हुई बाद ऐसी नज़में हज़रत मीर साहब ने कही हैं कि उनका असर पढ़ने वालों के दिल बल्कि रूह पर भी होता है। हज़रत मीर साहब के मजमूए कलाम का नाम बुखारे दिल है। इसमें एक नज़म है जिसका उन्वान है तुम। इस नज़म में हज़रत मीर साहब ने अपने महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला को मुखातिब किया है, और तुम से मुराद भी यहाँ अल्लाह ताला ही है। इस नज़म के बाद अशार मिसाल के तौर पर पेश हैं ताकि पढ़ने वाले हज़रत मीर साहब का रंग तसव्वुफ़ मुलाहिज़ा फरमा सकें। इलाज दर्द दिल तुम हो, हमारे दिल रुबा तुम हो, तुम्हारा मुद्दा हम हैं, हमारा मुद्दा तुम हो। मेरी खुशबू मेरा नगमा, मेरे दिल की गज़ा तुम हो, मेरी लज्जत मेरी राहत मेरी जन्नत शहा तुम हो, मेरे हर दर्द की दुख की मुसीबत की दवा तुम हो, रिजा तुम हो गिना तुम हो, शिफा तुम हो रज़ा तुम हो। हर एक ज़र्रा में जलवा देख कर कहती हैं ये आँखें, तुम ही तुम हो तुम ही तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपने एक मजमून बानवान खमखाना इश्क में एक रात में अपना एक हैरत अंगेज़ रूहानी तजर्बा बयान किया है। ये मजमून जो कि अलफजल कादियान मौरखा 3 नवंबर 1936 में छपा था, वाकई पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। ये वाक़या कशफी और इल्हामी कैफियत का मजमूआ है। हम इसे मुकालमा इलाहिया भी कह सकते हैं। दिसंबर 1920 की बात है। हज़रत मीर साहब की उम्र इस वक्त 39 बरस थी। एक रात आप बैत मुबारक कादियान में इशा की नमाज़ पढ़ कर फारग हुए तो देखते देखते बैतु ज़िक्र नमाजियों से खाली हो गई और आप तन्हा रह गए। हज़रत मीर साहब भी बैतु ज़िक्र की सीढ़ियाँ उतरना शुरू हुए कि इश्क इलाही की एक अजीब कैफियत ने अज खुद आपके दिल में जोश मारा, गोया ये कैफियत आपके दिल पर नाजल की गई। साथ ही आपको बैतु ज़िक्र के अंदर से एक गैबी आवाज़ आई, मेरा घर छोड़कर अपने घर चला है, और फिर ऐसे खलवत के वक्त में जो आइंदा कभी मुयसर नहीं आएगा। ये आवाज़ सुनकर आप उल्टे पैर वापस बैतु ज़िक्र की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे कि अल्लाह ताला की तरफ से फिर यह हुक्म हुआ, हरीमे कुदस का रास्ता भूल गया। ये सीढ़ियाँ तो खमखाना इश्क में नहीं आती, ना ये आशिकों का रास्ता है। फिर खुदा ताला ने इल्हामन फरमाया कि आना है तो पुरानी सीढ़ियों की तरफ से आ, और सर के बाला और गिरेबान चाक करके आ। चुनाचे इस इलाही हुक्म की तामील में हज़रत मीर साहब ने उन कदीम और तंग सीढ़ियों का रास्ता इख्तियार किया जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस्तेमाल फरमाया करते थे, चूँकि अल्लाह ताला के सबसे बड़े आशिक इस ज़माना में हज़रत मसीह मऊद ही थे, इसीलिए वो पुरानी सीढ़ियाँ ही आशिकों का रास्ता कहलाए जाने के लायक थीं। हज़रत मीर साहब ने इस वक्त एक बेइख्तियारी की हालत में खुद अपने हाथों से अपना गिरेबान चाक किया, पुरानी सीढ़ियों की दहलीज पर पहुँचे तो फिर हुक्म हुआ, ए अशअस अकबर, ले उठ और ऊपर चल। अशअस अकबर से मुराद बिखरे बाल और गबार आलूद पेशानी वाला शख्स है। चनाचे आपने फिर सीढ़ियों को इस तरह कदम ब कदम तय किया कि हर जीना पर सजदा करते और फिर अपनी दाढ़ी से इसे साफ़ करते और फिर अगले जीना की तरफ बढ़ते। आपने सीढ़ियों का यह मुख्तसर सा रास्ता जीना ब जीना एक घंटे में तय किया। बैतुल ज़िक्र में पहुँच कर फिर आप इबादत और दुआओं में मशगूल हो गए। इस राजो न्याज के दौरान हज़रत मीर साहब ने अल्लाह ताला से उसकी बख्शिश तलब की। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आया कि मुफ्त। हज़रत मीर साहब ने अर्ज़ किया कि मैं क्या पेश कर सकता हूँ, जो कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जान और एक चीज़ सबसे अजीज़। इस हसीनो दिल नशी मुकालमा इलाहिया के बाद हज़रत मीर साहब की तहज्जुद जारी रही। तहज्जुद और फजर के दरमियानी वक्त में, जबकि आप मेहराब के पीछे पहली सफ में बैठे हुए थे, कोई दबे पांव खामोशी से आपके पीछे से गुजरा। हज़रत मीर साहब ने सर उठाकर देखा तो बहालत बेदारी आपको कशफन अपने सामने एक बहुत बड़ा आईना दिखाई दिया। तब आपको यह एहसास हुआ कि जो हस्ती आपके पीछे थी वो इस आईना में अपना जलवा आपको दिखाना चाहती है। फिर अचानक आँख को चुंधिया देने वाला एक नूर इस आईना में ज़ाहिर हुआ, जिसे नज़र भर कर देखना नामुमकिन था, लेकिन हज़रत मीर साहब ने फिर भी हिम्मत करके इस आईना में जलवा गर खुदा ताला की तजल्ली को देख ही लिया। फिर अल्लाह ताला की वो नूरानी तजल्ली इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उल्टे पांव पीछे हट गई। हज़रत मीर साहब के अपने अल्फाज में, यूं मालूम होता था कि उस जाने जाना ने मुझे अपना रुख ज़ेबा दिखाने के लिए यह शक्ल आफ्ताब निसफ़ नहार की इख्तियार की है, और मैंने इस तमाम नाजो अंदाज के अंदर एक इरादा, एक मजाक, एक शोखी, एक तरहम और एक मोहब्बत की नज़र को बचश्मे खुद मुलाहिजा किया। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब अल्लाह ताला के इन बंदों में से थे जिनके बारे में वो खुद फरमाता है, युरीदूना वजहहू, यानी वो खुदा का चेहरा देखना चाहते हैं। दीदार के इसी शौक़ ने आपको मजबूर किया कि इस रूहानी तजर्बा के दौरान आगे बढ़कर और हिम्मत करके इस नूर का नज़र भर कर मुशाहिदा कर लें कि जिस नूर की ताब आँखें नहीं रखती। सुबह होते ही हज़रत मीर साहब ने अल्लाह ताला से इशारा पाकर पहले एक स्याह बकरा और एक सफ़ैद मेंढा कुर्बान किए, फिर अपनी अजीज़ तरीन जायदाद यानी आपका वो ज़ाती मकान जो बैत मुबारक कादियान के ऐन साथ था और जिसका नाम आपने कुंज आफियत रखा था, वो जमात को दे दिया। फिर जब घर पहुँचे तो अपनी अजीज़ बेटी सैयदा मरियम सदीक़ा पर नज़र पड़ी। आपने उसी वक़्त अपनी बेटी को गोद में उठा कर ये दुआ की, इसका नाम ही शाहिद है, मेरा पहले भी यही इरादा था, अब इसे कबूल फरमाइए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस हसीन रूहानी तजर्बा पर जो कैफियत हज़रत मीर साहब के दिल की थी वह आपके अपने अल्फाज में पढ़ने के लायक है। आप तहरीर फरमाते हैं, जहे नसीब वो और मुझे अपना चेहरा दिखाएं, वो और मुझसे मेरी जान का मुतालबा करें, वो और मुझसे मेरी एक अजीज़ चीज़ की नज़र तलब फरमाएँ। बैत मुबारक और दारुल मसीह के कुर्ब में वाक़या आपकी अजीज़ जायदाद कुंज आफियत वक्फ होने के बाद अखबार अलफजल के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हुई और फिर बाद में जमात के हस्पताल के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही। गोया हज़रत मीर साहब का ये नजराना उसी वक्त कबूल हो गया। अल्लाह ताला ने इस नजराने की कबूलियत का यूँ सबूत दिया कि कुंज आफियत सिलसिला अहमदिया के मुख्तलिफ मकासद के लिए काम आता रहा और वक्फ रहा। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपनी पहली बेटी का नाम मरियम सदीक़ा इस नीयत से रखा था कि वो हज़रत मरियम की तरह अल्लाह ताला की राह में वक्फ हो, और इसी बेटी का दूसरा नाम आपने नज़र इलाही भी इसी ख्याल से रखा था। यह फ़िक्र हज़रत मीर साहब को बदस्तूर लाहक रही कि मरियम सदीक़ा की सूरत में पेश किया जाने वाला नजराना कबूल हुआ है या नहीं। यह फ़िक्र तकरीबन 15 साल हज़रत मीर साहब को दामनगीर रही। बिलाखर खुदा की दरगाह में इस नजराने की कबूलियत का निशान इस तरह ज़ाहिर हुआ कि आपकी अजीज़ बेटी सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा का हाथ आपकी बड़ी बहन हज़रत अम्मा जान ने अपने प्यारे बेटे حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی کے لیے مانگ لیا۔ 1935 میں سیدہ مریم صدیقہ بنت حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کی شادی حضرت مرزا محمود احمد ابن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ خلیفۃ المسیح کی بیگم کی حیثیت سے حضرت سیدہ مریم صدیقہ المعروف حضرت چھوٹی آپا نے اپنا فرض خوب نبھایا اور اپنی زندگی خدمت دین اور تعلیم قرآن کے لیے وقف رکھی۔ صدر لجنہ اماء اللہ مرکزیہ کی حیثیت سے دنیا بھر کی احمدی عورتوں کی تربیت اور تنظیمی رہنمائی بھی کی اور یوں نظر الہی کے نام کی حقدار ٹھہریں۔ رہا معاملہ جان کے نذرانہ کا تو وہ بھی خوب انداز میں قبول ہوا۔ آپ کی دوسری بیٹی سیدہ امۃ اللہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ وفات سے کچھ عرصہ قبل حضرت میر صاحب کو ایک کشف میں ایک ہاتھ کا سایہ دکھایا گیا، پھر وہ ہاتھ کا عکس لفظ اللہ میں تبدیل ہو گیا، پھر آپ کی توجہ لفظ اللہ کے اعداد کی طرف پھیری گئی۔ لفظ اللہ کے اعداد 66 بنتے ہیں، الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30 اور پھر ہا کے 5، یعنی کل 66۔ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی وفات لفظ اللہ کے اعداد پر یعنی 66 برس کی عمر میں ہوگی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس روز جمعہ کا دن ہوگا۔ حضرت میر محمد اسماعیل صاحب 18 جولائی 1881 کو پیدا ہوئے اور 18 جولائی 1947 بروز جمعہ آپ کی وفات ہوئی، ٹھیک اسی دن جس دن آپ پورے 66 برس کے ہو گئے۔ نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم، یوں آپ کی جان کہ جس کا نذرانہ آپ سے مانگا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادہ سے عین اتنی عمر میں نظر ہو گئی جتنے کہ اللہ کے نام کے اعداد ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس انداز میں ایک معین دن پر اس جہان سے واپسی اختیار کرنا حضرت میر صاحب کا فعل نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا، بلکہ اگر کچھ تھا تو فعل الہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا اپنے بندے کے لیے محبت اور قبولیت کے اظہار کی ایک نادر نشانی تھی، اپنے پاک نام اور اسم اعظم کے اعداد پر اپنے بندے کو اپنے پاس بلا کر، جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار خود حضرت میر محمد اسماعیل صاحب پر فرمایا، وہاں دوسری طرف دنیا پر یہ بھی کھول دیا کہ اس بندے کی محبت مقبول درگاہ ہوئی ہے۔ جس حسین نام پر آپ زندگی بھر جان دیتے رہے، بلاخر بوقت رحلت بھی اسی پر جان دی۔ خمخانہ عشق میں ایک رات کے مضمون میں درج واقعات کی کیفیات کو حضرت میر صاحب نے شعری صورت میں ایک نظم میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اس نظم کے چند اشعار پیش ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کلیجہ ہے کہ آتش ہے، یہ آنکھیں ہیں کہ بادل ہے، نہ اس پہلو مجھے کل ہے نہ اس پہلو مجھے کل ہے، گریباں چاک کر ڈالا اسی جوش محبت میں، ہزاروں حرکتیں ایسی کہ گویا عقل مختل ہے، طواف کسرے جانا میں کبھی کرتی تھی یہ راتیں، ہر ایک زینہ پہ ایک سجدہ کہ یہ دلبر کی ہیکل ہے۔ اس تمام روحانی تجربہ کے بیان کے بعد حضرت میر محمد اسماعیل صاحب ہر احمدی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک نہایت غور طلب نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، یہی وہ دروازہ ہے جسے احمدیت نے 1300 سال کے بعد آج پھر دنیا کے لیے کھولا ہے، اور یہی وہ کوچہ ہے کہ جس پہ سر پر ملائکہ تیرے جیسے متلاشیانے عشق کی راہ تک رہے ہیں۔ دنیا اس نعمت سے غافل ہے، مطلوب آج طالب بنا ہوا ہے اور معشوق اپنے اس شاق کے انتظار میں سر راہ بے نقاب کھڑا ہے۔ ففروا الی اللہ، میرے پیارو دیکھو، اگر تم نے احمدی ہو کر بھی اس یار ازلی کا چہرہ نہ دیکھا تو پھر احمدیت کا کیا لطف آیا اور ایمان کی کیا حلاوت نصیب ہوئی۔ ہر سچے عاشق کو اپنے محبوب کے لیے جذبہ عشق کے علاوہ سچی غیرت بھی ہوتی ہے۔ حضرت میر صاحب کو اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے غیر معمولی طور پر شدید غیرت تھی۔ 1907 کی بات ہے جب حضرت میر صاحب میو ہسپتال لاہور میں ابھی سرجن تھے کہ آپ کی بڑی سالی صاحبہ جو آپ کی پھوپھی زاد بھی تھیں آپ کی طرف مہمان آئیں۔ ان کے ہاں کچھ عرصہ قبل ایک بچی پیدا ہوئی جو چند روز بعد ہی وفات پا گئی۔ اپنی اس بچی کو یاد کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، میرے بہنوئی ڈاکٹر میر صاحب اگر میرے پاس ہوتے تو میری بیٹی نہ مرتی۔ بظاہر وہ حضرت میر صاحب کی تعریف کر رہی تھیں اور ان پر اپنا اعتماد ظاہر کر رہی تھیں، لیکن یہ بات وہ خدا کے ایک ایسے بندے کے سامنے کر رہی تھیں جسے خود سے زیادہ خدا تعالیٰ کے لیے غیرت تھی اور جسے ایک پل کے لیے بھی یہ منظور نہ تھا کہ اس کی اپنی ذات کو ہی بت بنا دیا جائے۔ حضرت میر صاحب نے اپنی سالی صاحبہ کی یہ بات سن کر فرمایا، कि हाँ अब इनके पास एक लड़का होगा और वो मेरे हाथों में ही मरेगा ताकि इनका ये शिर्क टूटे। 6 बरस बाद यानी 1913 में आपकी इसी फूफीजाद बहन के हाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो अपना बच्चा लेकर अपनी हमशीरा और बहनोई यानी हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की तरफ आई। दौरान सफ़र बेहतियाती के नतीजा में उन्होंने अपने बच्चे को ख़राब दूध पिला दिया जो थर्मस में पड़ा बासी हो चुका था। बच्चे का पेट ख़राब हो गया। हज़रत मीर साहब के यहाँ पहुँचे तो बच्चा बीमार था, हालत बिगड़ गई। हज़रत मीर साहब के अलावा दीगर डॉक्टरों से भी इलाज करवाया गया लेकिन बिलाखर चंद रोज़ की अलालत के बाद वो बच्चा फोत हो गया। तौहीद इलाही के लिए हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की तबीयत में जो गैर मामूली गैरत थी वो एक दूसरे वाक़े से भी ज़ाहिर होती है। हज़रत मीर साहब की साहबजादी सैयदा तैयबा सदीक़ा साहिबा बेगम नवाब मसूद अहमद ख़ान साहब ने बयान किया है। वाक़या ये है कि हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के बच्चों में सबसे छोटे सैयद अमीन अहमद साहब अपने बचपन के इब्तदाई अयाम में बहुत कमज़ोर और बीमार रहते थे। सैयदा तैयबा सदीक़ा साहिबा हज़रत मीर साहब की बड़ी बेटियों में से थी, चनाचे सैयद अमीन अहमद की निगहदाश्त का जुमा इनके सुपुर्द हुआ। कुछ अर्सा की देखभाल के बाद जब बच्चा कमज़ोरी की हालत से बाहर आ गया और सेहत संभल गई तो एक मौका पर जिस तरह के बहनें ना से कहा करती हैं, सैयदा तैयबा सदीक़ा साहिबा ने भी अपने वालद हज़रत मीर साहब से कहा, अगर मैं इसे ना रखती तो पता नहीं क्या होता। अगरचे ये अल्फाज सादा दिली और मासूमियत से कहे गए थे लेकिन हज़रत मीर साहब को खुदा ताला के लिए ऐसी गैरत थी कि आपने अपनी बेटी को जवाबन फरमाया, अब ये बड़ा होगा और तुम्हारे घर में फौत होगा। सैयद अमीन अहमद साहब अपनी बड़ी बहन सैयदा तैयबा सदीक़ा साहबा से उम्र में अंदाजन 15 बरस छोटे थे। बज़ाहिर इसी बात का ज़्यादा इम्कान होता है कि जो 15 बरस बड़ा हो वो इस जहाँ से पहले रुखसत हो, लेकिन ज़ाहरी इम्कान के बरखिलाफ 1998 में सैयद अमीन अहमद साहब की वफ़ात अपनी बड़ी बहन की ज़िंदगी में हुई। वफ़ात अगरचे कराची में हुई लेकिन कराची से उनका जनाजा रवा में मौजूद बड़ी बहन सैयदा तैयबा सदीक़ा साहिबा के घर लाया गया और बिलाखर तदफीन के लिए इस भाई का जनाजा इसी बहन के घर से उठा। आज हज़रत मीर साहब के ये दोनों बच्चे अल्लाह ताला के फजल से बहिश्ती मकबरा रवा में मदफून हैं। खुदा से मोहब्बत करने वाले खुदा के लिए गैरत भी रखते हैं और खुदा की गैरत में कहे गए उनके कलेमात के लिए खुदा भी गैरत रखता है और बसा औकात वो अल्फाज किसी न किसी रंग में पूरे हो जाते हैं। बस खुदा की यही मोहब्बत और गैरत हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की ज़िंदगी में हमें दिखाई देती है। जिन दिनों हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का तकर्रुर गुरदासपुर था इन दिनों एक दोस्त मलिक मौला बख्श साहब भी वहीं मुकीम थे। मलिक साहब ने हज़रत मीर साहब को मशवरा दिया कि वो कोशिश करके अपना तकर्रुर मुश्किल तौर पर गुरदासपुर करवा लें क्योंकि वो कादियान से करीब पड़ता है। हज़रत मीर साहब ने जवाबन फरमाया, मैं तो वहाँ ही रहना चाहता हूँ जहाँ मेरा खुदा मुझे रखे, वो मुझसे बेहतर जानता है कि मेरा कहाँ रहना मुफीद है। 1925 में हज़रत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का तबादला गुरदासपुर से गोजरा हुआ। इन दिनों हज़रत मीर साहब के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी जिसके साथ एक साइड कार थी। ये सवारी इस ज़माना में बहुत आम और मकबूल ज़रिया आमद रफ्त था। आपने इस सवारी पर बरास्ता कादियान इस तरह सफ़र इख्तियार किया कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए उजरत पर एक मिस्त्री साथ ले लिया और ख़ुद साइड कार में बैठ गए। सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। सूरत हाल ये थी कि रात ढल रही थी और आगे जंगल था और करीब तरीन आबादी भी दूर थी, चोरी और डकैती के खतरात भी थे और हज़रत मीर साहब की जेब में काफ़ी रकम भी थी। इस सूरत हाल में हज़रत मीर साहब ने अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआ शुरू की। ऐन उसी वक़्त आपके करीब एक कार आकर रुकी। देखा तो इस गाड़ी में हज़रत खलीफतुल मसीह उस्मानी और हज़रत चौधरी मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे जो इसी रास्ता से लाहौर सफ़र कर रहे थे। हज़रत मीर साहब इनके हमराह कार में बैठ गए और वहाँ से रवाना हुए। कबूलियत दुआ का ये एक मौजा था। इसी वाक़या पर हज़रत मीर साहब अपनी दिली कैफियत यूँ बयान फरमाते हैं, इस अजीब और बरवक्त आसमानी मदद से मेरा दिल शुक्र के जज्बात से इतना लबरेज हो गया था कि सारे रास्ते में बड़ी मुसीबत से अपने तई जब्त करता रहा। बस हज़रत मीर साहब के तसव्वुफ़ की बुनियाद तसव्वुर जाना पर नहीं बल्कि दीदार जाना पर थी। आपका कदम उस सच्चे तसव्वुफ़ की राह पर था जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के फैज से ज़िंदा हुआ। आप अहले काल में से नहीं बल्कि अहले हाल में से थे। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की ज़िंदगी का हर शोबा ही इसके इलाही ताल्लुक़ बिल्ला और फ़नाफ़ इल्ला के हसीन रंगों से रंगीन नज़र आता है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का मंजूम कलाम बुखार दिल भी बहुत गहरी सूफियाना शायरी पर मुश्तमिल है। बस क्या कौल और क्या फ़ेल, हर पहलू से आपकी सीरत एक आरिफ़ बिल्ला की सीरत है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत ख़ातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क और फिदायत का ताल्लुक हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब को था, वह आपके नातिया कलाम के हर मिसरे बल्कि हर लफ्ज़ से झलकता है। आपकी नाते पढ़ते हुए जहाँ एक तरफ पढ़ने वाले के दिल से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरूद व सलाम उठता है, वहाँ हज़रत मीर साहब के दिल की आशकाना कैफियत का भी अंदाज़ा होता है। हज़रत मीर साहब की एक नात बाउनवान सलाम बहज़ूर सैदुल्ला नाम है। अपनी तासीरात के लिहाज से नीज़ अपने अदबी कमाल के अतबार से भी ये एक बेमिसाल नात है। इस नात के बारे में हज़रत खलीफतुल मसीहुर राबे रहमतुल्लाह तआला ने जलसा सालाना बरतानिया 2002 के मौके पर फरमाया था, जब से मैंने होश संभाली है कभी ऐसी नात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की नातों के बाद ना सुनी ना देखी, और मेरा ख्याल है कि हमेशा के लिए यह नात हज़रत मीर साहब को खराज तहसीन पेश करती रहेगी। इस नात में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सवाने और शान के मुख्तलिफ पहलुओं का बहुत हसीन अंदाज में ज़िक्र पाया जाता है। ये मुकम्मल नात पेश है। सलाम बहज़ूर सैयदुल अनाम बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मरजाए खासवाम बसद इज्ज़ो मिन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आपका एक गुलाम के ऐ शाह कौनैन आली मुकाम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। हसीनान आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूर जबी फिर इस पर वो अखलाक के अकमल तरी के दुश्मन भी कहने लगे आफरी जहे खुल के कामिल जहे हुस्न ताम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। खलाएक के दिल थे यकीन से तही बुतों ने थी हक की जगह घेर ली जलालत थी दुनिया पे वो छा रही के तौहीद ढूंढे से मिलती न थी हुआ आपके दम से इसका कयाम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। मोहब्बत से घायल किया आपने दलाइल से कायल किया आपने जहालत को जायल किया आपने शरीयत को कामिल किया आपने बयां कर दिए सब हलाल व हराम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। नबूवत के थे जिस कदर भी कमाल वो सब जमा है आप में ला महाल सिफात जमाल और सिफात जलाल हर एक रंग है बस अदीमुल मिसाल लिया जुल्म का अफ़व से इंतकाम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। मुकद्दस हयात और मुतहर मजाक अतात में यकता इबादत में ताक सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बगुज़िश्त अज कसरे नीली रवाक मुहम्मद ही नाम और मुहम्मद ही काम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। अलमदार उश्शा के जाते यगा सिपहदार अफवाज कुद्दूसियां मुआरिफ का एक कुल जमे बेकरां हिफाजात में जिंदा ओ जाविदा पिला सा किया आब कौसर का जाम अलैकस सलातो अलैकस सलाम। इस नात का एक मिसरा मोहम्मद ही नाम और मोहम्मद ही काम तो अपनी मकबूलियत और जामियत की वजह से ज़ुबान ज़दे आम हो चुका है। यह मिसरा इस कदर मकबूल हुआ है कि अब जमात अहमदिया के इल्मे कलाम में बतौर उनवान का इस्तेमाल होता है। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की एक और नात जो बेहद दिलनशी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है मुश्तबा है के उनवान से है, इसके चंद अशआर पेशे खिदमत हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा है मुश्तबा है मोहम्मद महलिका है दिल रुबा है मोहम्मद जामे हुस्नो शमाइल मोहम्मद मोहसने अर्जो समा है मोहम्मद नयरे राहे हुदा है मोहम्मद शाफ़े रोज़े जज़ा है, मोहम्मद फ़ख्रे शान आदमियत, मोहम्मद मजहर ज़ाते खुदा है, मोहम्मद बाईस तकवीन आलम जिसे लौलाक खालिक ने कहा है, मोहम्मद मालिक मोहरे नबूवत नबीगर इसलिए कहना रवा है, मोहम्मद काबे कौसैन मोहब्बत शफी वसले इंसानों खुदा है, मोहम्मद रहमतुल आलमीन है अदूब तक जिसके एहसान से दबा है, मोहम्मद साहिब अखलाक कामिल जमाली और जलाली एक जा है, गर्द सचमुच मोहम्मद है मोहम्मद जबी तो चार सू सल्ले अला है। इस दिलकश नात का हर एक शेर इतना पुरमानी है कि हर शेर पर एक शरह लिखी जा सकती है। इन अशार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इम्तियाजी शानें बयान हुई हैं जो आपको बाकी तमाम अम्बिया से मुमताज़ और बाला ठहराती हैं। बस ये नात इल्मी एतबार से भी, हुस्न बयां के एतबार से भी और इजहार इश्क के एतबार से भी एक शाहकार है। तारीख़ के मुतालिया से पता चलता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में मस्जिद नबवी से मुल्हिका एक चबूतरा बनवाया था। इस चबूतरे पर छत थी। इस चबूतरे का नाम असुफा था। सहाबाए रसूल में से एक गिरोह था जो दिन भर इस चबूतरे पर इस घर से मुकीम रहता कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मार्फत से ज़्यादा फैज़ पाएँ। नीज़ इस घर से भी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का कोई मौका हाथ से न जाए। रात भर ये सहाबा जो असहाब सुफा कहलाते थे अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। बस असहाब सुफा के शब रोज़ इसी तरह गुजरते। 1936 में जब हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रिटायर होकर कादियान आए तो आपने अपने घर का नाम असुफा रखा। इस नाम का इंतखाब ही गोया आपके दिल की कैफियत को ज़ाहिर करता है। दरअसल ये नाम एक ऐसे दिल का इंतखाब था जिसकी यही मर्ज़ी थी और यही मुराद थी कि बस दिन रात आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकट पर पड़ा रहे, अपना दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत और आपके मुकासद के लिए कोशिश में सर्फ करे और अपनी रात अल्लाह ताला की इबादत और याद में गुजार दे। हज़रत मीर साहब का इल्मी और कलमी जिहाद जो आपके मज़ामीन और आपके अशार की सूरत में है, दिफाए दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही था। बहसियत डॉक्टर आपकी खिदमत खल्क भी दरअसल रहमतुल आलमीन ही के मुकासद रहमत के हसूल के लिए एक जिहाद था और इसी तरह आपकी रात भर की बातें और रियासतें भी दरअसल सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की एक राह थी। है अहमद से बैअत। महदी मऊद के जहूर के साथ जहां एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हुई, वहां दूसरी तरफ साथ ही उम्मत के लिए एक इम्तिहान का आगाज भी हो गया। आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के नाम ये वसीयत थी कि इज़ार आए तो मुँह हो फबाय ऊ हो वलाओ हबवन अलसलज फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहिल महदी। यानी कि जब तुम इसे देख लो और जब वो ज़ाहिर हो जाए तो ज़रूर इसकी बैत कर लेना, चाहे तुम्हें बर्फ़ के ऊपर से रेंग कर जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा अलमहदी है। 1889 में अल्लाह का खलीफा अलमहदी ज़ाहिर हो गया और साथ ही एक मुबारक ग्रोह मोमिनीन का भी ज़ाहिर हुआ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इमाम महदी की बैत कर ली। यही वो मोमिनीन थे जो इताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान में पूरे उतरे और वो इसाबा यानी जमात जिसने महदी की क़्यादत में दीन का दिफा करना था, वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के यही रुफका थे। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब भी इसी मुबारक ग्रोह का हिस्सा थे। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब इन इब्तदाई खुश नसीबों में से थे जिन्होंने हज़रत अहमद अलमहदी के हाथ पर बैत की। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब अपने मंजूम कलाम में अहमदी की तारीफ़ बयान करते हुए फरमाते हैं, हूँ अल्लाह का बंदा मोहम्मद की उम्मत, है अहमद से बैत खलीफा की तात, मेरा नाम पूछो तो मैं अहमदी हूँ। इस बंद का ये मिसरा है अहमद से बैत से मुराद हज़रत अहमद अलमहदी के साथ रिश्ता बैत है और यही बैत है जो अहमदियों को बाकी तमाम दुनिया से मुमताज़ करती है। इस बैत के ज़रिया हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब उस ग्रोह में शामिल हो गए जिनका जिक्र कुरान करीम में आखरीन के नाम से और हदीस में महदी मऊद के रुफका के तौर पर हुआ है। अल्लाह ताला ने آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے امور انتہائی تفصیل کے ساتھ روشن کیے تھے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی کے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مہدی موعود کی تصدیق فرمائے گا اور اس کے رفقاء کو دور دور سے لا کر اکٹھا کر دے گا، جن کی تعداد اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 ہوگی، اور یہ کہ مہدی کے پاس ایک مطبوعہ کتاب ہوگی جس میں ان 313 رفقاء کے نام، ان کا تعلق کن مقامات سے ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے، یہ سب درج ہوگا۔ یہ حیرت انگیز حدیث ایک کتاب جواہر الاسرار میں درج ہے، جس کے مؤلف علی حمزہ بن علی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو اپنی تصنیف انجام آتھم میں بھی درج فرمایا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یصدقہ اللہ تعالی ویجمع اصحابہ من اکثر بلاد عدت اہل البدر بثلاث مئات عشر رجلا ومعہ صحیفۃ مختومۃ فیہا عدد اصحابہ باسمائہم وبلادہم وخلالہم، یعنی اللہ تعالیٰ خود مہدی کی تصدیق فرمائے گا اور دور دور کے شہروں سے اس کے رفقاء کو جمع کر دے گا، جن کی گنتی اہل بدر کے برابر ہوگی یعنی 313 مرد، اور مہدی کے پاس ایک مطبوعہ کتاب ہوگی جس میں ان 313 رفقاء کے نام، ان کے شہروں کے نام اور ان کی کیفیت مذکور ہوگی۔ اس حدیث کے الفاظ یصدقہ اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ خود مہدی کی تصدیق کرے گا، 1894 میں اس وقت پورے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے عین مطابق وہ دو علامات ظاہر ہو گئیں، جن کا ظاہر کرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا، یعنی ماہ رمضان کی معین تاریخوں میں چاند اور سورج کے گرہن کی نشانیاں۔ 1894 میں یہ دونوں نشان دنیا کے مشرق میں دیکھے گئے، پھر 1895 میں یہی دو نشان رمضان کی انہی تاریخوں میں دنیا کے مغرب میں دوبارہ ظاہر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پرروب تصدیق کے بعد 1897 میں حضرت مہدی علیہ السلام نے ایک کتاب بعنوان انجام آتھم تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں اپنے 313 رفقاء کے نام، ان کے شہروں کے نام اور ان کی کیفیت کو قلم بند فرمایا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان رفقاء کی کیفیت ان الفاظ میں درج فرمائی ہے، یہ تمام رفقاء خصلت صدق و صفا رکھتے ہیں اور حسب مراتب جن کو اللہ بہتر جانتا ہے، بعض بعض سے محبت اور انقطاع اللہ اور سرگرمی دین میں سبقت لے گئے ہیں۔ اپنے ان 313 رفقاء کی اس کیفیت کے بیان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ناموں کی مکمل فہرست درج فرمائی ہے۔ اس مبارک فہرست کے 70 نمبر پر حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کا نام حضور نے اس طرح درج فرمایا ہے، 70، سید محمد اسماعیل دہلوی، طالب علم، حال قادیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم پیش گوئی کے پورا ہونے پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسی کتاب میں تحریر فرمایا ہے، فرمایا، چونکہ حدیث میں آ چکا ہے کہ مہدی موعود کے پاس ایک چھپی ہوئی کتاب ہوگی جس میں اس کے 313 رفقاء کا نام درج ہوگا، اس لیے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ پیش گوئی آج پوری ہو گئی ہے۔ پھر اس پیش گوئی کی تکمیل کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، نہ 313 مخلص رفقاء کا پیدا کرنا میرے اختیار میں تھا، بلکہ یہ تمام اسباب خود خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، پس اس طرح 13 صدیاں قبل کی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی 1897 میں لفظاً لفظاً پوری ہوئی، فصادق اللہ ورسولہ۔ اس عظیم واقعہ کے حوالہ سے دیکھا جائے تو حضرت میر محمد اسماعیل صاحب کو یہ امتیازی شان بھی حاصل ہے کہ آپ ان مقدس 313 رفقاء مہدی میں شامل ہوئے جن کی پیش گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ 1895 میں جبکہ حضرت میر صاحب کی عمر 14 برس تھی، آپ کو رمضان المبارک قادیان میں گزارنے کا موقع ملا۔ آپ کو اس عمر میں بھی عبادت کا ایسا شغف تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا عشق تھا کہ تمام رمضان آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز تہجد ادا کی۔ حضرت میر صاحب نے اپنا مشاہدہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز تہجد کے دوران हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का यह तरीक था कि पहली रकत में हमेशा आप आयतुल कुर्सी तलावत फरमाते और दूसरी रकत में सूरह इखलास। नीज़ ये कि हुजूर रुकू व सजूद में या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस की दुआ बकसरत पढ़ते थे। ये रवायत जहाँ एक तरफ हज़रत मीर साहब की इब्तदाई उम्र में ज़ौक़ इबादत की दलील है, वहाँ इस बात का भी सबूत है कि आप छोटी उम्र में भी किस गहरी नज़र से अपने मुर्शिद व मुता के तौर तरीका मुशाहिदा करते थे। 1900 में जबकि हज़रत मीर साहब की उम्र 19 बरस थी, ईद उल अज़हा के मौका पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी खुतबा ईद दिया जो खुतबा इल्हामिया कहलाता है। ये खुतबा अरबी में था। खुतबा इल्हामिया वही खफी और जली पर मुश्तमिल था। अल्लाह ताला की तरफ से अल्फाज नाजल होते जाते और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से जारी रहते। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपने जज्बाए इश्क और फिदाइत के तहत चंद ही रोज़ में यह पूरा खुतबा ज़बानी याद कर लिया और फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को सुनाया। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने तमाम उम्र अपना अहद बैत कामिल वफा के साथ निभाया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपका यह अहद बैत हज़रत खलीफतुल मसीहुल अव्वल और फिर हज़रत खलीफतुल मसीहुल सानी के हाथ पर जारी रहा और आपके लम्हे वफा तक जारी रहा। 1906 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जब सदर अंजुमन अहमदिया कायम की तो आपने ख़ुद हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब को इसका मेंबर मुकर्रर फरमाया। रवायत यह है कि हज़रत अकदस ने घर आकर हज़रत अम्मा जान को बताया कि आपने मियाँ महमूद और मीर मोहम्मद इस्माइल को अंजुमन का मेंबर बना दिया है और वजह यह बयान फरमाई कि ताकि और लोग नुकसान ना पहुँचावें। यह वाक़िया इस बात की दलील है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब पर किस कदर एतमाद था। खिलाफत उला के आखिर और खिलाफत सानिया के आगाज़ पर वो और लोग जिनकी तरफ से हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को नुकसान का अंदेशा था, खिलाफत अहमदिया से अलग हो गए। इस मरहला पर हज़रत मीर साहब ने खिलाफत से अलग होने वाले हज़रात को मुखातिब करके फ़र्दन फ़र्दन नाम ब नाम नसीहत अमेज़ नज़में लिखी और अपने कलम को दावत हक़ के लिए खूब इस्तेमाल किया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ जो दो तरफ़ा मोहब्बत का तल्लुक हज़रत मीर साहब को था, उसका ज़िक्र हज़रत खलीफतुल मसीह सानी इन अल्फाज़ में बयान फरमाते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत मोहब्बत थी और इनके कामों में दिलचस्पी लेते थे। इसी तरह हज़रत मीर साहब का भी उनसे आशिकाना ताल्लुक़ था। फिर फरमाया, हज़रत मीर साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफ़क़ा में से थे और आपके मंजूर नज़र थे। 1924 में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी यूरोप के सफ़र पर तशरीफ़ ले गए तो आपने हज़रत मीर साहब को नाज़िर आला सदर अंजुमन अहमदिया मुकर्रर फरमाया। हज़रत मीर साहब के नाम का ऐलान करते हुए 11 जुलाई 1924 के खुतबा जुमा में हज़रत खलीफतुल मसीह सानी ने आपके बारे में अपनी राय और गवाही इन अल्फाज में बयान फरमाई। इनके दिल में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बल्कि इश्क ख़ास तौर पर पाया जाता है। इस मोहब्बत की वजह से रूहानियत का एक ख़ास रंग उनमें पैदा हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ ऐसी ठोकर से जो दूसरों को लग जाती है या लग सकती है, खुदा ने इनको महफूज किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ताल्लुक़ की वजह से जो बरकात उन पर नाजल हुई हैं उनके बायस जमात के लिए बहुत मुफीद वजूद साबित होंगे। हज़रत खलीफतुल मसीह सानी का हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब को अपनी गैर मौजूदगी में नाज़िर आला सदर अंजुमन अहमदिया मुकर्रर फरमाना और फिर ये तारीखी अल्फाज इस मौका पर इरशाद फरमाना, गोया इस बात का सबूत है कि हुजूर को हज़रत मीर साहब पर कामिल एतमाद था। हज़रत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से जो आशिकाना ताल्लुक़ हज़रत मीर साहब को था, वो नज़म और नसर दोनों में आपके अंदाज़े बयां से ज़ाहिर हो जाता है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाला से हज़रत मीर साहब अपनी एक नज़म बाउनवान हमारा आका में फरमाते हैं, रूहानियत का आफ्ताब दुनिया में चमका बेहिजाब, वो हुस्न जिसके सामने सारे हसीं थे आब आब, आई अजल इतनी शताब गोया के एक देखा था ख्वाब, हमको बला थी क्या खबर हैं वो खड़े पा दर रकाब, बेफिक्रियों में हम रहे हत्ता तवारत बिल हिजाब। फिर एक और नज़म में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक के हवाला से ज़िक्र करते हुए आप फरमाते हैं, जहाँ फिदा कर दूँ मज़ारे यार पर गोहरे शब ताबे काने कादियाँ, यानी वो जो चौदहवीं का चांद थे महदी आखर ज़माने कादियाँ। शमाइल व खसाइल। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब एक बहुत वजी इंसान थे। आपका चेहरा कुशादा और बहुत नूरानी था, रंगत सफ़ेदी माइल गंदमी थी, जिस्म भरा हुआ और कद दरमियाना था, कुशादा और शफाफ पेशानी थी। आपकी चाल बहुत बावकार और गुफ्तार नरम थी। हज़रत मीर साहब के देरीना दोस्त जो हज़रत मीर साहब को अपना उस्ताद करार देते हैं, मोहतरम शेख मोहम्मद इस्माइल साहब पानीपति थे। मोहतरम शेख साहब जिन्होंने हज़रत मीर साहब के शमाइल व खसाइल का बग़ौर मुशाहिदा किया हुआ था, आपके बारे में फरमाते हैं, उनकी सूरत फरिश्तों जैसी और उनकी सीरत वलियों जैसी थी। वो नहायत हंसमुख, नहायत मिलनसार, नहायत खुश गुफ्तार, नहायत बजला संज और नहायत खुश अखलाक इंसान थे। जो शख्स एक मर्तबा उनसे मिल लेता था, वो हमेशा के लिए उनका गर्विदा हो जाता था। हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जो इबारत हज़रत मीर साहब के कतबा की तहरीर फरमाई, इसमें हुजूर फरमाते हैं, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को उनसे बहुत मोहब्बत थी और उनके कामों में आप दिलचस्पी लेते थे। इसी तरह हज़रत मीर साहब का भी आपके साथ आशिकाना ताल्लुक़ था। भाइयों में हज़रत अम्मा जान को हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब से ज़्यादा मोहब्बत थी, नहायत ज़हीन और ज़की थे, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफ़का में से थे और आपके मंजूर नज़र थे। हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा अलमारूफ़ छोटी आपा हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की सबसे बड़ी साहबजादी और हज़रत मुस्लिम मऊद की बेगम थी। आप अपने वालद गरामी के बारे में फरमाती हैं, हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक़ साहब से हज़रत अम्मा जान को अगर बेटों की तरह प्यार था, तो अब्बा जान पर इन्हें बहुत नाज था। हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा की ये भी गवाही है कि अगर हज़रत अम्मा जान किसी चीज़ की तारीफ़ फरमाती, तो हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब उसे फ़ौरन हज़रत अम्मा जान को तोहफ़तन पेश कर देते। हज़रत अम्मा जान आपको रोकती रह जाती, लेकिन आप इसरार करके वो तोहफ़ा साथ कर देते। हज़रत मीर साहब हज़रत अम्मा जान को आपा कहते थे और हज़रत अम्मा जान इन्हें अहले दिल्ली के मुहावरा के मुताबिक मियाँ कहकर मुखातब फरमाती। हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा अपने वालद गिरामी के बारे में फरमाती हैं, बच्चों से प्यार भी था लेकिन कड़ी नज़र रखते थे। मैंने पाँचवीं तक घर में पढ़ा, आज तक आपके पढ़ाने का दिलनशी अंदाज़ याद है। मुझे पढ़ाने के बाद फरमाते, अब अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाओ, मैं सबसे बड़ी थी, फरमाया करते थे, बड़े बच्चे की तरबियत पर तवज्जो दो, इसका असर छोटों पर भी पड़ेगा। ज़ुबान और तलफ़ुज़ का इतना ख्याल था कि एक दफ़ा मैंने लफ्ज़ गलत को गलत कह दिया। अब्बा जान नाश्ता फरमा रहे थे, मुझे बुलाया, अपने पास खड़ा कर लिया और फरमाया, कहो गलत गलत, इसी तरह कहती रहो। जब नाश्ता फरमा चुके तो फिर मुझे रुख्सत दी। हज़रत मीर साहब की साहबजादी सैयदा अमतुल्ला बेगम साहिबा बेगम पीर सलाहुद्दीन साहब बयान करती हैं कि हज़रत मीर साहब की एक ज़ाती कार थी जो आप खुद चलाते थे। इससे पहले हज़रत मीर साहब ने बड़े शौक़ से अपने एक हिंदू दोस्त से ड्राइविंग सीखी थी। हज़रत मीर साहब ने वो गाड़ी हज़रत अम्मा जान को तोहफ़ा में ले दी। हज़रत अम्मा जान ने कुछ अरसा वो गाड़ी अपने इस्तेमाल में रखी और फिर जमात को दे दी। हर ईद उल फितर पर हज़रत मीर साहब की तरफ से हज़रत अम्मा जान के लिए नाश्ता और ईदी आया करती थी और हज़रत अम्मा जान ईद के रोज़ वही नाश्ता तनावल फरमाती। हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के छोटे भाई थे और हज़रत मीर साहब को बहुत महबूब थे। हज़रत सैयदा मरियम सदीक़ा साहिबा फरमाती हैं, मैंने खुद देखा कि चचा जान यानी हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब जब बीमार होते तो अब्बा जान उनके पाँव सहला रहे होते। आखिरी बीमारी में अब्बा जान मीर साहब के कमरे में जाते और सख्त बेचैन होकर बाहर आते, दुआएँ करते और फरमाते कि डॉक्टर, अब इनको क्यों टीके पर टीका लगा रहे हो, ये टीके मेरे दिल पर लगते हैं। हज़रत मीर साहब की दो बेगमा थीं, आपकी पहली बेगम हज़रत शौकत सुल्तान साहिबा थीं और दूसरी बेगम हज़रत अमतुल लतीफ़ साहिबा थीं। आपकी तमाम तर औलाद आपकी दूसरी बेगम से थी। ये हज़रत मीर साहब की तरबियत का असर था कि दोनों बीवियों में कभी सारी उम्र कोई नचाकी नहीं हुई, बल्कि दोनों के दरमियान हकीकी बहनों से बढ़कर मोहब्बत और तआवुन का ताल्लुक था। हज़रत मीर साहब ने जो दोनों बेगमात के दरमियान अदल और मीज़ान कायम फरमाया हुआ था, वह आपकी अपनी शख्सियत के मीज़ान का आयनादार है। आपके बच्चे अपनी बड़ी वालदा को अच्छी अम्मा और अपनी हकीकी वालदा को अम्मा कहते। आपकी औलाद को बड़े होने के बाद पता चला कि इनको जन्म देने वाली वालदा कौन सी हैं। हज़रत मीर साहब की तरबियत का ऐसा असर था कि आपकी वफ़ात के बाद भी दोनों बेगमात इसी तरह इकट्ठी रहीं और अपनी वफ़ात तक इकट्ठी रहीं। बच्चे भी दोनों माओं से आखिर तक बराबर वाबस्ता रहे। हज़रत मीर साहब की साहबजादी सैयदा अमतुल्ला बेगम साहिबा ने हज़रत मीर साहब के बूदोबाश के बारे में बाज़ दिलचस्प उमूर बयान किए हैं। उन्होंने बताया, हज़रत मीर साहब के मिजाज में बहुत सफाई, नफासत और तरतीब थी। आपके ज़ाती कमरा में आपकी चीज़ें बहुत तंजीम से रखी होती थीं। हर एक को आपके कमरा में जाने की इजाज़त ना थी। आपको ये बर्दाश्त ही ना था कि कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए। दौरान सर्वस काम पर जाते हुए मगरबी तर्ज का लिबास यानी पतलून, कोट और टाई पहनते। घर में सफ़ेद लट्ठे का पाजामा और कुर्ता पहनते थे। आप कराकोली टोपी भी पहनते थे, जिसे हम आजकल जनाह कैप कहते हैं, और लुंगी के कपड़े की पगड़ी भी बांधी थी। चलते फिरते छड़ी इस्तेमाल करते थे। सैयदा अमतुल्ला बेगम साहिबा की शादी के बाद एक मरतबा हज़रत मीर साहब ने इन्हें नसीहत फरमाई। फरमाया, अपना दस्तरखान वसी रखना, मजहब व मिल्लत की तफरीक न करना। मेरे घर में बारहा हिंदू और ईसाई मेहमान आए हुए हैं। आपको शोरबा में रोटी चूर कर खाना बहुत पसंद था, लेकिन दूसरी तरफ चमचा, कांटा और छुरी का इस्तेमाल भी फरमा लेते थे। आपने खुद अपनी बेगमात और बड़ी बेटियों को खाने की मेज़ मगरबी आदाब के मुताबिक लगानी सिखाई। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के बड़े साहबजादे सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने अपने वालद की शख्सियत के नुमायां तरीन पहलुओं को बयान करते हुए फरमाया, हज़रत मीर साहब आला बल्कि आला तरीन इंटेग्रिटी के मालिक थे। खा माली अमूर हो या इख्तियारात का इस्तेमाल या फिर सरकारी मराज से इस्तफादा हो, हज़रत मीर साहब का किरदार इस कदर बुलंद दिखाई देता है कि हैरान कुन है। आपकी दयानत आम कानून पसंदी से बहुत बाला थी। रोज़मर्रा के मामलात में भी आपके पेश नज़र तकवा की वो बारीक तरीन राहें होती जो अक्सर नज़रों को दिखाई भी नहीं देती। सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने एक दिलचस्प वाक़या ज़िमन में बयान किया। एक मरतबा अंग्रेज़ हुकूमत ने कादियान से लाहौर का रेल गाड़ी का टिकट 15 आने का कर दिया। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि कादियान से बटाला तक का टिकट 2 आने का और बटाला से लाहौर का टिकट 11 आने का होगा। चुनांचे लोग इस सहूलत से कानून के दायरे में रहते हुए फ़ायदा उठाते और पहले 2 आनों में बटाला और फिर 11 आनों में लाहौर पहुँच जाते। हज़रत मीर साहब ये पसंद न फरमाते। एक वजह तो वाजे है कि जब नीयत सफ़र लाहौर की हो तो टिकट भी लाहौर का होना चाहिए। हज़रत मीर साहब की ये राय थी कि असल में सहूलत बटाला वालों को दी गई है, इसलिए कादियान से जाने वालों को इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अब ये कोई कानूनी नुक्ता नहीं था, बल्कि हज़रत मीर साहब का तकवा था जिसने इस सोच को जन्म दिया। चुनाचे आप 15 आने खर्च करके ही ये सफ़र फरमाते। सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने यह भी बयान किया है कि हज़रत मीर साहब की तबीयत इंतहाई हयादार थी, जिसकी गवाही बाज़ दीगर रफ़का ने भी दी। आपने अपने वालद ग्रामी के शमाइल का ये पहलू भी बयान फरमाया कि हज़रत मीर साहब में ये गैर मामूली सलाहियत थी कि शिर्क के खफीफ से उनसर को भी भांप लेते थे। आप रिवायत करते हैं कि एक मरतबा हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के बारे में फरमाया, मामू जान यानी हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब शिर्क को बहुत जल्द डिटेक्ट कर लेते थे। वो इस मामले में बहुत हसास थे। सैयद मोहम्मद अहमद साहब ने अपने वालिद का जिक्र एक अजीम नासे की हैसियत से भी किया। आपको नसीहत करने का खुदादार सलीका हासिल था और हक बात की नसीहत ज़रूर फरमाते। नसीहत का अंसर आपके कलाम में जा बजा दिखाई देता है। उन्होंने ये भी बताया कि बाद उसूलों पर हज़रत मीर साहब सख्ती से कायम थे, जिस वजह से बाज़ औक़ात आपकी तबीयत का जलाल भी ज़ाहिर हो जाता था। अपने वालद के बारे में आप बयान करते हैं, अगर किसी रिश्ता और ताल्लुक़ के लिए इन्हें वाकई तड़प थी तो वो खुदा ताला की ज़ात थी। हज़रत मीर साहब की साहबजादी सैयदा अमतुल कुदूस साहिबा ने अपने वालद बुजुर्गवार की आदात व शमाइल के हवाला से बाज़ बहुत दिलचस्प बातें बयान फरमाई हैं। अपने बचपन की याद का जिक्र करते हुए आपने बताया कि हज़रत मीर साहब की नमाज तहज्जुद आधी रात के बाद शुरू हो जाती और नमाज के दौरान मुसलसल आपके कमरे से सिसकियों और रोने की आवाज़ आती। आपने ये भी बताया कि हज़रत मीर साहब बच्चों को फजर की नमाज के लिए इस तरह उठाते कि नहायत खुश इल्हानी के साथ बुलंद आवाज़ में कुरान करीम की तलावत करते। बच्चे तलावत कुरान की आवाज़ से बेदार हो जाते। नीज बच्चों को भी तलकीन फरमाते कि फजर के बाद ऊंची आवाज़ में तलावत कुरान करो। बच्चों की तलावत की सेहत की निगरानी का भी ये तरीक था कि जब कोई बच्चा तलावत कर रहा होता तो हज़रत मीर साहब बहुत धीमे कदमों के साथ टहलते रहते, और अगर इसी असना में कोई बच्चा तलफ़ुज़ की गलती करता तो वहीं इसलाह फरमा देते। सैयदा अमतुल कुदूस साहिबा ने बयान फरमाया कि हज़रत मीर साहब की ये वसीयत थी कि आपके बाद आपकी बेटियों के रिश्ते खलीफा वक्त की मर्ज़ी से तय हों। चनाचे आपकी इसी वसीयत की तामील में आपके बाद आपकी बेटियों के रिश्ते हज़रत मुस्लिम मऊ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ही तय फरमाए। हज़रत मीर साहब के बाद ऐसे असूल भी थे जिनमें आप कभी भी रायत का मुजाहरा ना करते। हज़रत मीर साहब की साहबजादी सैयदा अमतुर रफ़ीक साहिबा बयान फरमाती हैं, एक मरतबा अब्बा जान घर पहुँचे तो देखा कि अहमद हुसैन साहब, जो हज़रत मीर साहब के दरीना खिदमतगार थे, दाल के साथ रोटी खा रहे हैं। अंदर आए और खाने पर बैठे तो अम्मा ने थोड़ा सा गोश्त का सालन भी पेश कर दिया। अब्बा जान ने जब वजह पूछी तो अम्मा ने कहा बस थोड़ा सा सालन था। अब्बा जान मेज से उठकर चले गए। इसके बाद अम्मा ने हमेशा मुलाजम को वही खाना दिया जो घर वालों के लिए होता था। कादियान में हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के हमसाया में हज़रत मौलवी शेर अली साहब थे। हज़रत मौलवी शेर अली साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक अजीम रफ़ीक थे, मशहूर मतरजमे कुरान और अजीम आलमे दीन थे। हज़रत मौलवी साहब हज़रत मीर साहब के बारे में फरमाते हैं, आपने हमसायगी के ताल्लुक़ को जिस खूबी और उम्दगी से निभाया है, बंदा इसके बयान से अपने आप को आजिज़ पाता है। हज़रत हाफिज़ मुख्तार अहमद साहब शाह जहाँपुरी रफ़ीक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब नहायत मुत्तकी और नहायत मुतवाज़े थे। मखलूक़ खुदा की दीनी व दुनियावी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ आपको एक ख़ास किस्म का ताल्लुक था। हज़रत डॉक्टर ग़ुलाम गौस साहब रफ़ीक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मीर साहब के बारे में फरमाते हैं, आप रुफका में गालिबन सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले थे। शायद ही सिलसिले की कोई तहरीक हो जिसमें आपने हिस्सा ना लिया हो। सिलसिला अहमदिया के मशहूर आलिम और मुरबी हज़रत मौलाना जलालुद्दीन शम साहब हज़रत मीर साहब के बारे में फरमाते हैं, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक जलीलुल कदर रफ़ीक थे और मोहम्मद अहमद और महमूद के आशिक सादिक थे। आप अहमदीयत के दरख्शिंदा सितारे थे जो लोगों की रहनुमाई करता और आसमान अहमदीयत के वस्त में नहायत आबोताब से चमकता था। जमात अहमदिया के मशहूर आलिम और मुरबी हज़रत मौलाना अबुल अता जलंदरी साहब फरमाते हैं, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब औलियाउल्लाह में से थे। आपकी रूहानियत हम नशीनों पर असरानंदाज होती थी और इनकी मजालस में बैठने वालों को ख़ास लज़त हासिल होती थी। हज़रत मीर साहब इश्क़ इलाही का चलता फिरता नमूना थे। इन्हें ज़ाहरी और खुश्क बातों से दिलचस्पी न थी, बहुत बड़े नुक्ता रस आलमे दीन थे। जमात के मशहूर आलिम सीरत निगार और जामिया अहमदिया के उस्ताद मोहतरम मौलाना ग़ुलाम बारी साहब साहब फरमाते हैं, तालब इल्मी के ज़माना में किसी ने सवाल किया कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफका में से सबसे बड़े सूफ़ी कौन थे। याद नहीं कि क्या जवाब दिया गया, लेकिन यह खूब याद है कि उन्होंने फिर खुद ही फरमाया, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब। अहमदी नौजवानों और बच्चों के लिए यह इंतहाई ज़रूरी है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के रुफका की सीरत और हलाल से वाकफियत हासिल करें। पाक रूहों का यह एक मुकद्दस गिरोह था जो अब दुनिया से उठ चुका है। इनके हालात का मुतालिया जहां एक तरफ हमारे ईमानों को ताज़ा करता है, वहां दूसरी तरफ हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि जिस मसीह महदी के मुरीदों की यह कैफियत थी, उसकी अपनी क्या शान होगी। हज़रत खलीफतुल मसीहुर राबे अहमदी बच्चों की एक महफिल में हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब हज़रत अम्मा जान के भाई थे। डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब बहुत काबिल इंसान थे, बहुत गुणों वाले थे। उनकी सीरत पर तो पूरी किताब शाया होनी चाहिए। लतीफ़ा गो थे, शायर भी थे और बेहतरीन सर्जन और ज़बरदस्त मुरबी और कुरान का गहरा इल्म रखने वाले बहुत काबिल इंसान थे। हमारे प्यारे हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब को अल्लाह ताला की तरफ से ये बशारत पहले ही दे दी गई थी कि इस जहां से उनकी वापसी उतनी उम्र में होगी जितने आदाद लफ्ज अल्लाह के हैं। अरबी जबान की रूह से लफ्ज अल्लाह के आदाद 66 बनते हैं। साथ ही ये खुशखबरी भी पहले से दे दी गई थी कि आपका विसाल जुम्मा के दिन होगा। हजरत मीर साहब की पैदाइश 18 जुलाई 1881 को हुई और आपकी वफ़ात अल्लाह ताला के वादा के ऐन मुताबिक 18 जुलाई 1947 बरोज़ जुम्मा हुई, जिस दिन आप पूरे 66 बरस के हो गए। यूँ इस जहान में आपका क्याम ठीक इतने ही सार रहा जितना के लफ्ज़ अल्लाह के आदाद हैं। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदे के हक में यह गैर मामूली इजहार मोहब्बत था। बस 18 जुलाई 1947 को इस फ़ानी ज़िंदगी के वो तमाम हिजाबात जो हज़रत मीर साहब और इसके महबूब अज़ली के दरमियान थे वो उठ गए और आप अपने माशूक हकीकी के हजूर हाजिर हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस रोज़ हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब अपने मुर्शिद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस हसीन मिसरे की हसीन तस्वीर बन गए। हजूर का ये मिसरा आपकी खिदमत में पेश है। आज हम दिलबर के और दिलबर हमारा हो गया। हजरत मीर साहब अपनी ज़िंदगी में इस दिली तमन्ना का कई बार जिक्र कर चुके थे कि इनकी कबर हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कुर्बो जवार में हो। चुनाचे आपका एक दुआया मिसरा है, मिल जाए एक कबर जवारे मसीह में। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की शान में कहे गए एक कसीदा में हजरत मीर साहब हजूर को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, तेरे कदमों में ए बदरे मुनव्वर जगह थोड़ी सी आ जाए मुयस्सर। हजरत मीर साहब के आखिरी सांसों के वक़्त हजरत मुस्लिम मऊद आपके साथ थे। आपकी नमाज जनाजा भी हजूर ने ही पढ़ाई और तदफीन के लिए हजूर खुद कब्र में उतरे और फिर तदफीन के बाद दुआ कराई। हजरत मीर साहब की कब्र बहिश्ती मकबरा कादियान में, आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयद बेगम की कब्र के पहलू में और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जवार में और आपकी कब्र के कदमों में है। यूँ अल्लाह ताला ने हजरत मीर साहब की दिली तमन्ना को पूरा फरमाया। हजरत मीर साहब की वफात से फ़कत 5 रोज़ कबल की बात है, हजरत मौलाना ग़ुलाम रसूल साहब राजे की, जो कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के एक साहिब करामत रफीक थे, उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक बशारत मसूल हुई। हजरत राजे की साहब बयान फरमाते हैं, मुझ पर अचानक एक रबूदगी और गनूदगी की कैफियत तारी हुई। इस वक्त मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मेरे कानों के बिल्कुल करीब ही कोई कलाम करने लगा है। नहायत फसीह और मौसर लहजा में कलाम का तर्ज है। इस वक्त मुझे यही महसूस कराया जा रहा था कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ है। चुनांचे अल्लाह ताला ने नहायत ही हिल्म और रहम के पराया में यूं कलाम फरमाया, मीर मोहम्मद इस्माइल हमारे प्यारे हैं, इनके इलाज की तरफ फ़िक्र करने की चंदान ज़रूरत नहीं, हम खुद ही इनका इलाज हैं। दरअसल हर सच्चे आशिक का एक ही मर्ज़ होता है और वो महबूब का हिजर फिराक है, और इस मर्ज़ का इलाज एक ही है और वो महबूब खुद होता है। हजरत मीर साहब की भी यही कैफियत थी, जिसकी गवाही अल्लाह ताला ने हजरत राजे की साहब के इस इल्हाम के ज़रिए दी। हजरत डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की सीरत और सवाने उमरी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के शेर की तस्वीर हैं, तेरे मिलने के लिए हम मिल गए हैं खाक में, ता मगर दरमा हो कुछ इस हिजर के आज़ार का। ये शेर जितना आपकी ज़िंदगी के वाक़यात के हवाले से सच्चा है, उतना ही आपकी वफ़ात के हालात पर सादिक आता है। अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहु वनव्वर मरकदहू वरफ़अ दरजातही वादखिलहु फ़ी जन्नतिन नईम आमीन। ईसा सानी यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब फरमाया था कि मसीह मऊद और इसके रुफ़क़ा अल्लाह ताला की तरफ रागब होंगे और रागब रहेंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बासत एक ऐसे दौर में हुई जबकि तमाम इंसानियत ही रगबत इलत दुनिया में गर्क थी। अगर इंसान को कोई रगबत थी तो वो माल की तरफ, दुनियाए फ़ानी की तरफ और मादी ख्वाहिशात के हसूल की तरफ। ऐसे ज़माना में हम देखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपके रुफ़क़ा की ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर रगबत इल्लाह के रंग से रंगीन थीं। यही वो आखरीन है जिनका जिक्र खुदा ताला कुरान करीम की सूरह जुमा में करता है। यही वो खुश नसीब हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मानी और मकानी फ़ासले के बावजूद मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वसातत से आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूहानी फैज़ पाया जो सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ था। और यही वो खुश नसीब हैं जिनका जिक्र सही मुस्लिम की हदीस में ईसाए सानी के रुफका के तौर पर हुआ है। बस इसमें कोई भी शक नहीं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशगोइयों की तरह ये पेशगोई भी बड़े आबोताब से पूरी हुई। हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब की मुबारक ज़िंदगी भी इस मुबारक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रोशन तस्दीक है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।